और यह बात बिल्कुल फैक्ट है, जब किसी व्यक्ति पर घोर संकट पड़ता है उस समय भगवान की जैसी याद आती है, सुख के दिन में वो याद नहीं आती। दुख पड़ जाता है तो उस समय लगता है कृष्ण अब आपके बिना हमारा कोई नहीं है, इस दुख से कोई पार नहीं करेगा। तो उस दुख के समय में जो भगवान को पुकारना होता है, उस पुकार में और रोज की आरती घुमाने में बहुत अंतर है। आप ऐसे तो रोज ओम जय जगदीश हरे कह करके घुमा दे आरती, भगवान को दिखा दे, लेकिन जो दुख में भगवान की याद आती है वो और ही होती है। तो कुंती महारानी को यह अनुभव है कि जब जब दुख पड़ा है और जिस तरीके से हमने पुकारा आपको, तो वो सुख के दिन में नहीं हो पाएगा। हो सकता है हम लोग राज्य पा करके भूल जाए सुख में, इसीलिए हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहे। तत्र 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 का अर्थ है सर्वत्र, सब समय सब देश में हम पर विपत्तियां पड़ी रहे, जिससे कि आपका स्मरण हो और आप आवें, आपका दर्शन हो। आपका दर्शन ही सबसे बड़ा सुख है। तो संपूर्ण वैदिक इतिहास में यही एक भक्त है कुंती, जो भगवान से विपत्ति मांग रही है। प्रकारांतर से वो विपत्ति नहीं मांग रही है, वो मांग रही है भगवान का दर्शन, भगवान से भेंट होना। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी आप इस तरह से क्यों विपत्ति मांग रही हैं, सब लोग तो संपत्ति मांगते हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि ये संपत्तियां, ऊंचा पद, धन, सुंदर शरीर, विद्या, ये सब जीव के कल्याण में बाधक हैं, श्रेय हमें ये परिपंथी हैं, विघ्न डालने वाले हैं। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभी रेधमान मदह पुमान नैवार्हत्यभिधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। इस संसार में ऊंचे कुल में जन्म लेना और फिर कोई पद पा जाना, सुंदर शरीर होना और विद्या प्राप्त करना, ये चार जो हैं भक्ति में बहुत बड़े बाधक। जिस व्यक्ति का मद बढ़ जाता है ऊंचे कुल में जन्म लेने से, विद्या पढ़ने से, धन से, पद से, सुंदर शरीर से, वह व्यक्ति तो आपका कृष्ण गोविंद आदि नाम भी बोलने में शर्म करता है। और नाम भी नैवारहत्य भी धातुम वही, आपका नाम बोलने में भी उसको शर्म आती, इतना अभिमान हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में विपत्तियां रहें, दुख रहे। ऐसा हम लोगों ने भी देखा है कि जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत ऊंचे पद पर है, वे लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, देखा गया। उनको कहिए कि आप जरा मंदिर में आइए, तो कहते मंदिर में, अरे हमको कहाँ समय है मंदिर में आने का, अरे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और मंदिर में आ भी गए कदाचित किसी के कहने से, और उनको कहिए कि सष्टांग प्रणाम कीजिए, वो तो मर जाएंगे, सष्टांग प्रणाम जानते ही नहीं हैं। हमने देखा है भारतवर्ष में नेता लोग आते हैं मंदिर में तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना झुकाते हैं सिर को, लगता है कि टाइट किया गया है, झुक ही नहीं रहा है। बाकी बिहारी मंदिर में ऐसे करते हैं। हम लोग कभी कभी किसी किसी को कहे हैं कि चला प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, और उनको यदि माला अर्पण कीजिए भगवान की प्रसादी माला, तो माला अर्पण करते तुरंत निकाल देते हैं। उनकी ये भावना नहीं है कि ये प्रसादी माला है, और वास्तव में उनको जो मालाएं मिलती हैं वो निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रसादी माला होती नहीं है। वो तो मंच पर भाषण करने गए और कोई ला करके बाजार से माला पहना दी, तो माला धारण करने के अधिकारी तो है नहीं। लेकिन भगवान की जो माला आती है प्रसादी माला, उसे धारण करना चाहिए, इससे आदमी माया पर विजय पाता है। लेकिन जो बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया है और खास करके बहुत धन है, बहुत विद्या है, पद है, सुंदर शरीर है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि हमको भगवान की क्या जरूरत है, भगवान का भजन तो गरीबों को करना चाहिए, उनको जरूरत है कुछ, भगवान देंगे उनको, हमको क्या जरूरत है, हमारे पास तो धन भरा पड़ा है, ये हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि भगवान से मैं मांग, इस तरह का भाव आ जाता है, इतना अंधा व्यक्ति हो जाता है और सामने काल को मृत्यु को नहीं देख पाता। लेकिन जो व्यक्ति दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो उसको याद आता है कि नहीं भगवान सहारा देंगे, भगवान है ऐसे। इसीलिए कुंती महारानी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म, ऊंचा पद, सुंदर शरीर और विद्या, ये चारों व्यक्ति को खाई में गिराने वाले हैं। ये तो हम लोग सारी दुनिया में प्रचार करके देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये सब शास्त्रों की बातें बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। यहां तक कुछ लोगों ने प्रचार किया है बहुत काल पहले से ही कि भगवान का भजन तो लूले लंगड़े अंधों को करना चाहिए, जिनको कोई सामाजिक काम नहीं कर सकते हैं, जो लोग सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं, वे लोग सब मंदिर में दाखिल हों भजन करें, और बाकी जो समाज की सेवा कर सकता है, काम कर सकता है, उसको क्या मंदिर में जाने की जरूरत है। ये भगवान का भजन केवल अपाहिजों को करना चाहिए, वो लोग ये कहते हैं, जो समाज के किसी काम के लायक नहीं है वे सब इस कान में भर्ती हो जाए तो ऐसे बोलते हैं। और यहां तक कि हमने देखा है अपनी आंखों से, अगर मंदिर में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि आप प्रसाद ले लीजिए, खा लीजिए, तो हम कभी फ्री नहीं खाए हैं, हम कभी फ्री नहीं खाए, हम क्यों खाएं, तो अभिमान में वो कुछ पैसा निकाल करके देते हम खाए तो फ्री नहीं खाए, वो प्रतिदिन फ्री खा रहा। वो जब व्यक्ति कहा कि हम फ्री नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा कि जब से जन्म लिए हो सूरज का प्रकाश ले रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप का है, ये सूरज का लाइट, इसका बिल अगर आ जाए तब दे सकोगे, हवा में सांस ले रहे हो, पृथ्वी पर चल रहे हो, पानी पी रहे हो, अपने साथ लाए थे क्या, ये सब फ्री में मिल रहा है कि नहीं। तो व्यक्ति शर्म में पड़ा, अरे भगवान के सामने तुम ये सोचते हो कि मैं भगवान को कुछ दे करके और खा रहा हूं, ये श्रद्धा है तुम्हारी, देना चाहो दो मंदिर में भगवान की सेवा के लिए, लेकिन ये कह करके कि मैं फ्री नहीं लूंगा ये तो कोई बच्चा अपने माता पिता से कहने लगे कि मैं कुछ भी फ्री नहीं आपसे लूंगा, और जब से जन्म हुआ तो माँ का दूध पिया, गोद में रहा, ये सब फ्री नहीं लिया, क्या किया इस तरह से एक अभिमान होता है। श्रील प्रभुपाद जी जब व्याख्या कर रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम उस श्लोक की, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि कोई पत्र पुष्प फल मुझे देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं, इसे क्यों कह रहे हैं भगवान, ये कहते कि कोई मेरे शरण में आता है तो मैं उसको धन देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा उचित लगेगा ना कि भाई भगवान की शरण में कोई आवे तो मैं ये देता हूं, ये देता हूं, कहना चाहिए भगवान को, तब लोग आएंगे शरण में। लेकिन भगवान ये क्यों कहते हैं कि मुझको कोई देता है तो मैं लेता हूं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोगों को बहुत अभिमान रहता है कि मैं देने वाला हूं, लेने वाला नहीं हूं, भगवान तो सबका कल्याण चाहते हैं, कुछ लोगों के मन में वास्तव में होता है कि मैं किसी से ले नहीं सकता, मैं देने वाला हूं, इसीलिए भगवान कहते हैं ठीक है तो मुझको दो। देने के अभिमान से वो व्यक्ति हमारे पास आएगा, चलो हमें देना है। तो भगवान के पास चाहे कोई लेने के लिए आवे चाहे देने के लिए आवे, कल्याण तो उसका होगा ही तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दाता के अभिमान में रहते हैं कि मुझे देना है, लेना नहीं है, तो ठीक है देने के लिए आओ या लेने के लिए आओ, जैसे भी भगवान कृष्ण के पास आना चाहिए। तो बहुत बहुत अभिमान होता है। कुंती महारानी चूंकि राजकुल की हैं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य इनको प्राप्त है, इनके पुत्र युधिष्ठिर महाराज सम्राट होंगे, जीत चुके हैं महाभारत युद्ध में, ये जान रही है कि बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा धन आने वाला है, कहीं हम लोग भूल ना जाए कृष्ण को, ये शंका हो रही है। इसीलिए कहती है कि वो विपत्तियां आती रहें, कष्ट आती रहे। विपत्तियां दिमाग खोल देती हैं भगवान को समझने में। तो इसके बाद अपने मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान को प्रणाम कर रही हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बीच बीच में बारंबार प्रणाम कर रही हैं भगवान को। नमो किंचन वित्ताय, हे अकिंचनों के धन, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। जिनके पास संसार में कुछ भी नहीं है उनके धन आप, भगवान ही सबसे बड़े धन है। अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये, जो व्यक्ति आपकी शरण लेता है उसका उसकी गुण वृत्ति विषय भोग की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। आत्मा रामाय शांताय, आप अपने स्वरूप में रमण करते हैं, संसार के भोगों में आसक्त नहीं है, आप शांत हैं और आप ही मुक्ति देते हैं, वैकुंठ देते हैं, आपको मैं प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान इस बात पर कहते हैं कि ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं अस्तौसी, बुआ जी मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, आप क्यों मुझको ईश्वर कह रही हैं, क्यों ऐसा कह रही हैं। तब कुंती जी कहते हैं, मन्ने त्वाम कालम ईशानम अनाद निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम जन्मिथ कलि। मन्ने, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, आप मेरी भाभी देवकी का पुत्र बने हैं, ये तो सत्य है, पुत्र रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन आप वास्तव में ईश्वर भगवान है। मन्ने त्वाम कालम, आप ही काल हैं, आप ही जगत की सृष्टि करते हैं, विनाश करते हैं, और आप नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। मन्ने त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम, आपका न आदि है न निधन है, आप आदि अंत से शून्य हैं, आप सदा से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। भगवान का ये स्वरूप है, हम लोग ऐसे नहीं हैं, एक निश्चित डेट पर जन्म हुआ है और एक निश्चित डेट पर समाप्त हो जाएगा शरीर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अनाद निधनम, उनका वास्तव में कोई जन्म नहीं है, वो तो केवल प्रकट होते हैं इस संसार में, वो तो उसके बहुत पहले से। भगवान गीता बोल रहे हैं अकस्मात उन्होंने अर्जुन से कहा कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्जुन, जो तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, योग का उपदेश कर रहा हूँ, इस योग का उपदेश मैंने पहले विवस्वान को किया था। विवस्वान को किए थे कब? तो भगवान कहते हैं बहुत पहले, तो कोटि कोटि वर्ष पहले, उसमें अपने आप ध्वनित हो गया। तो अर्जुन पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, क्या सूर्य से भी पहले के आप हैं, विवस्वान से भी पहले के हैं क्या आप? अरे विवस्वान जो सारे जगत को आलोक देते हैं, जो सूर्य लोक के स्वामी है उनका नाम है विवस्वान, और जो चंद्र लोक के स्वामी है उनका नाम है सोम। तो आप विवस्वान को ज्ञान दिए थे, विवस्वान आपके शिष्य हैं, तो क्या विवस्वान से भी पहले आप जन्म लिए हैं? कथम एतद विजानीयम तुम आदो प्रोक्तवानी थी, मैं कैसे समझूं कि आप विवस्वान के भी गुरु हैं और बहुत पहले के आप हैं? अरे आप तो लगभग हमारे समवयस्क हैं, हम हमारे साथी हैं। तब भगवान कहते हैं, बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणी नत्तम वेद परम तप। हे परम तप, मेरे बहुत बहुत अवतार बीत चुके हैं और तुम्हारे भी। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, तव च बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, हमारे बहुत से जन्म बीत गए हैं, बहुत से अवतार बीत गए हैं, तुम्हारे भी, जब जब मैं आया हूँ तुम भी मेरे साथ आए हो, लेकिन तुमको कुछ भी याद नहीं है, हमको सब याद। तान्यहम वेद सर्वाणी, तानी सर्वाणी अहम वेद, लेकिन तुम न वेद था, तुम नहीं जानते। यही तो जीव की स्थिति है, तो अर्जुन कहते हैं कब कब अब आते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ, क्या करने के लिए। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, मैं जुग जुग में अवतार लेता हूँ आता रहता हूँ। इसको कहते हैं अनादि निधनम। भगवान बहुत पहले के हैं, वही आदि पुरुष है, उन्हीं से सबका जन्म हुआ है। और भगवान कब से हैं इसको ये प्रश्न पूछना ही गलत होगा। ये कब और तब और अब सब कालवाचक शब्द है, ये सीमा बांध रहा है। भगवान काल से परे हैं, उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कब से हैं। इसलिए शास्त्र कहता है अनादि। अनादि का अर्थ है अन आदि, अन नहीं, न आदिर जस्य स, जिसका आदि नहीं है, शुरुआत है ही नहीं। लेकिन हम लोग किसी का जन्म देखते हैं आदि देखते हैं, इसीलिए भगवान पर भी आरोप करेंगे आखिर तो कभी चालू हुए होंगे क्योंकि हमारा जो मन है वो काल से परिच्छिन्न है, काल द्वारा बाधित है, काल से अतीत की कल्पना भी नहीं मन में उठ सकती है। ऐसा है, इसको शास्त्रों में कहा गया है अध्यास, संस्कृत में अध्यास, किसी चीज का अध्यास हो जाना दृढ़। तो अध्यास का ये अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चे घुमरी परेता खेलते हैं, घुमरी कोई घुमा दे उनको, जोर से घुमा दे तो आंखों में उद्घूर्णा छा जाती है, घुमरी छा जाती है, और उद्घूर्णा युक्त आंखों से वो बच्चा जब देखता है तो देखता है घर घूम रहा है, झाड़ घूम रहा है, पर्वत घूम रहा है, सब घूम रहे हैं, ये देखता है ना। ये हम लोग भी खेल करके देखे हैं, कोई ना देखा हो तो क्लास के बाद घूम कर देख लीजिए अगर 10-20 बार घूम गए तो लगेगा कि ये सब घूम रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं घूमता है, जो जैसे है वैसे है। घुमरी छा जाती है आंखों में, तो उद्घूर्णा युक्त आंखों से जब हम देखते हैं तो अचल वस्तुएं भी सचल दिखाई देती, और उस समय कोई कहे कि नहीं 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 ये चल नहीं रहा है तो वो व्यक्ति मानेगा ही नहीं, वो दिखता है कि घूम रहा है। तो इसी तरह से हम लोग इतना परिच्छिन्न बुद्धि वाले हो गए हैं, किसी चीज की शुरुआत देखते हैं, किसी का मरण देखते हैं, किसी का आदि अंत देखते हैं, खराबी देखते हैं, मनुष्यों के शरीर में रोग दुख आदि देखते हैं। तो भगवान के स्वरूप में भी हम यही आरोप करते हैं,